बात चल रही थी विशुद्ध प्रेम की। भगवान के मन में तो यही बात रहती है कि जो मुझको अपने हृदय में बसा लेता है, मैं भी उसको अपने हृदय में बसा लेता हूं। परंतु इसका अर्थ ये मत लगाना कि जो भगवान को अपने हृदय में नहीं बसाता है वह कोई भगवान से अलग है। मैं अपने हृदय में बसा लेता हूं का अर्थ है मेरी तरफ से मैं बहुत प्रेम करता रहता हूं। कोई भक्त भगवान का ध्यान करता है तो भगवान यही न समझते हैं कि इसका ध्यान करना कर्तव्य है, ये करता है करने दो। भगवान कभी भी उसके ध्यान की उपेक्षा नहीं करते हैं, वे भी उसका ध्यान करते हैं। पितामह भीष्म ने सरसैया पर पड़े हुए भगवान का ध्यान किया तो जिस अवस्था में पितामह भीष्म थे उसी अवस्था में भगवान ने भी अपने हृदय से पितामह का स्मरण किया। पितामह भीष्म भगवान का स्मरण करें ये तो एक जमने वाली बात है। भगवान क्यों करें? भगवान इसलिए करते हैं कि भगवान में प्रेम है। तो इसमें हमको ये देखना चाहिए कि भगवान हमसे कितना प्रेम करते हैं। ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। एक तरफ कहते हैं समोहम सर्वभूतेषु न मे द्वेष्योस्ति न प्रिय है, ये भजन्ति तु माम भक्त्या मयिते तेषु चाप्यहम्। सब प्राणियों में मैं समान रूप से स्थित हूं। समान की बात क्या है? भगवान कहते हैं रहता तो मैं समान रूप से हूं परंतु इस समान भाव की स्थिति को जानते कौन है जो मेरी शरण आ जाते हैं, जो मेरा प्रेम से भजन करते हैं, वे अपने में ही मुझको देख करके गदगद होते हैं। इसलिए उनके हृदय में मैं और मेरे हृदय में वे। ऐसे प्रेमी भक्त होते हैं वे भगवान के लिए परम उदार होते हैं। उदार उदारा सर्व एवैते। कितनी विचित्र बात है, आर्त भक्त होता है उसका स्वार्थ स्पष्ट है कि वो अपनी पीड़ा को दूर करना चाहता है। अर्थार्थी तो अपने नाम से ही कहता है कि मैं तो कुछ चाहता हूं। जिज्ञासु है वो मोक्ष को चाहता है। परंतु जो ज्ञानी होता है वो तो सिवाय भगवान से प्रेम करने के अलावा ये भी नहीं चाहता कि भगवान मेरे से प्रेम करे। वो तो ये भी नहीं चाहता, वो तो यही चाहता है कि मैं भगवान से प्रेम करता ही रहूं। इसलिए भगवान कहता है कि वो मुझसे कुछ भी नहीं चाहता तो वो अतिशय प्यारा है, वो प्रेम भी नहीं चाहता। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वं च मयि पश्यति। जो मुझको सब जगह देखता है और मेरे में सबको देखता है तो मैं उससे ओझल नहीं होता और वो मुझसे अलग नहीं होता। संपूर्ण प्राणियों में स्थित जो मुझको देखता है वो सब काम करता हुआ भी मेरे में ही स्थित है। बाहर से तो ऐसा लगता है कि ये गृहस्थ में फंसा हुआ है, पर जिसने गृहस्थ को ही भगवान का काम समझ लिया वो भगवान में है। सारे प्राणियों में आत्मा रूप से मैं ही तो हूं, दूसरा कौन है। ऐसे परमात्मा में जो एक ही भाव से स्थित है, तन्मय हो गए है, ऐसा मेरा भक्त संसार में विचरता हुआ भी, सब आचरण करता हुआ भी, उसका जो भी व्यवहार होता है वो मेरी भक्ति होता है, मेरी भक्ति। देखो अपने कहते हैं कि मन नहीं लगता, सब समय में भक्ति कैसे हो, तो सब समय में भक्ति ऐसे होती, सब में भगवान को देखकर व्यवहार करो। भगवान कहते हैं उसकी दृष्टि में मेरे अलावा कोई वस्तु है ही नहीं, सब जगह मुझे देखता है, चाहे कोई स्थावर हो, चाहे जंगम हो, चाहे जड़ हो, चाहे चेतन हो, सब जगह भगवान को देखता है। बचपन में लुक छिपने का खेल खेलते थे, उसमें जो ढूंढने वाला होता था वो सब जगह छिपने वाले का विचार करता था, यहां है, वहां है, यहां है, इस खंभे के पीछे है, इस पाटे के नीचे है, या इस तख्त के पीछे है कि वहां, सब जगह देखता है। वो ये नहीं देखता कि कहीं एक जगह ही है, वो सब जगह देखता है। तो ऐसे करके वो सब जगह ढूंढता है, सब जगह ढूंढने से वो एक जगह मिल जाता है। वो तो एक जगह ही रहने वाला है, छिपने वाला, पर मैं तो सब जगह हूं, जहां मुझे ढूंढो वहां तैयार, ऐसा मेरा भगत होता है। वो मेरे में रमण करता है। ये रमण करना भी एक बड़ी विचित्र बात है। इस बात को ऐसे समझो कि वास स्थान की तरफ ख्याल करो, जो निवास स्थान है उसकी तरफ ख्याल करो, तो भगवान में ही कोई रहता है, कोई भी रहता है, किसी का भी निवास है वो भगवान के बाहर नहीं है। और भगवान से अलग, भगवान से बढ़िया, भगवान से श्रेष्ठ कोई वास स्थान है भी नहीं। भजने की ओर ख्याल करो तो भगवान जैसा कोई भजने योग्य है ही नहीं। प्रेम करने की बात करो तो भगवान से बढ़कर कोई प्रेम करने योग्य नहीं। एक भगत से किसी ने पूछा कि आप भगवान से क्यों प्रेम करते हो, तो उसने उत्तर दिया कि भगवान के अलावा कोई दूसरा प्रेम के योग्य दिखता ही नहीं है, मैं क्या करूं, कोई भगवान के समान दूसरा हो तो बताओ, भगवान के समान कोई दूसरा है ही नहीं, इसलिए भगवान से प्रेम करते हैं। एकता करनी हो, प्रेम करना हो, ध्यान करना हो, भजन करना हो, अपने को कहीं रखना हो, दोस्ती करनी हो, मन ही मन में यदि बातें करनी हो, हंसी मजाक भी करनी हो, मनोविनोद, हंसी मजाक, ये सब इसके योग्य भगवान है। हंसी मजाक भी करो तो भगवान से करो, रो तो भगवान के पास रो। हंसी मजाक से तात्पर्य क्या है कि भगवान की कई कई लीलाओं को भगवान से ही कहते रहो, वाह कैसी विचित्र लीला करते हो, हे भगवान आप माखन खाकर क्यों कहते हो कि मैंने माखन नहीं खाया, क्यों कहते हो, ऐसे ऐसे भगवान से विनोद करो। ऐसी बात यदि हृदय में बैठ जाए तो तो हम कहते हैं एक क्षण भी आप भगवान को छोड़ नहीं सकते। उस परमात्मा में परम प्रेम का जो साधन है वो ये सबसे बड़ा साधन यही है। प्राण पर्यंत यही चेष्टा करनी चाहिए कि हम भगवान से जुड़े रहे। आप एक बार ध्यान से सुनना, आप एक बार जुड़ करके देखो तो सही, इसमें बड़ा आनंद आने लगेगा, मजा आने लगेगा, फिर तो आप खुद भी छोड़ नहीं सकेंगे। आपको कोई कहेगा कि भजन ध्यान में क्या रखा है तो ये बात आपको तीर जैसी लगेगी। शुरू शुरू में थोड़ी कठिनाई लग सकती है, वो भी हमारे प्रमाद से, पर आगे इसमें महान आनंद छिपा हुआ है। पूरी चेष्टा से जब लग जाओगे तो आपके हाथ की बात नहीं, आप छोड़ दोगे। इसलिए समझना चाहिए कि भगवान के समान हमारा कोई नहीं है। परम हितेशी भगवान है, परम प्यारे भगवान है, हमारे अपने भगवान है। भगवान अपने हैं, अपने हमारे अपने हैं। यह एक बहुत विचित्र भाव है। हमारा जो एक अपना आपा है, आत्मा है, ये भगवान ही है। ये आत्मा भगवान है और आत्मा में स्वाभाविक प्रेम है, तो इस प्रेम को पहचानना चाहिए। और यदि अपने आत्मा में प्रेम नहीं हो रहा है तो समझना चाहिए कि भाई हमने कोई ठीक ढंग से बात सुनी नहीं है, सुन भी ली है तो समझी नहीं है, और समझ भी ली है तो विश्वास नहीं है। माताओं बहनों सज्जनों, एक एक शब्द मोती के समान है इनके। या तो सुनी नहीं है, और कह हमने तो सुन ली तो समझी नहीं है कि, तो हम तो समझा सकते हैं, इतनी समझी है हमारी तो बात, ये तो समझी है तो फिर विश्वास नहीं है, यहां आके तो रुकना ही पड़ेगा। सुन लिया, समझ लिया, बुद्धि में बात बैठ गई, पर विश्वास नहीं है। सुनकर के यदि विश्वास हो जाए, श्रद्धा हो जाए, तो उसी वक्त वैसा काम बन जाए। इसकी कसौटी यह है, जिस समय प्रेम का ऐसा भाव हृदय में उत्पन्न होता है तो हृदय गदगद हो जाता है, प्रफुल्लित हो जाता है, शरीर रोमांचित होता है, कभी कभी अश्रुपात भी होने लगता है, वाणी रुकती है, कंठ रुकता है, वाणी जो है वो सो एक प्रकार से गदगद हो जाती है, कभी कभी नासिका में से पानी निकलने लगता है, एक अलौकिक दशा हो जाती है। इस प्रकार की समझ आकर के इस प्रकार का परिवर्तन न हो तो फिर करुणा भाव की जागृति तो होनी चाहिए ना। मानो भगवान से मिलने की व्याकुलता तो होनी चाहिए। कोई कहे कि हमारे तो व्याकुलता भी नहीं है, तो भाई फिर आप भगवान को चाहते भी नहीं हो। भगवान को चाहो भी, अपना भी मानो, प्रेमी भी मानो, और उनके बिना आप व्याकुल भी नहीं होते हो, ऐसा संभव नहीं है। भगवान के वियोग में विरह की व्याकुलता ऐसी होनी चाहिए कि बिना मिले रहा न जाए। फिर भी न हो तो एकांत में बैठकर, देखो सेठ जी ने इसमें तो नहीं लिखा है, और जगह कहा सुबह पहले उठ करके सब सोए हुए हों, शांत वातावरण में सुबह पहली बैठकर एकांत में भगवान के सामने रो, खूब रो। या सुबह पहली के लिए तो नहीं कहा है, या कहा है कि एकांत में बैठकर दिल खोल करके रो, अपने दिल में कोई छिपाव मत रखो, साफ साफ कहो भगवान से, हे भगवान मैं क्या करूं, मेरी गलती भी मैं जानता हूं, मैं विवश भी हूं, आप नहीं आ रहे हो इसमें मैं मेरी ही गलती मानता हूं, क्या करूं, आपके बिना रहा नहीं जाता, मेरा जो भी अटकाव है उस अटकाव से आप क्यों विलंब कर रहे हो, क्यों मुझे तरसा रहे हो। हनुमान जी की ये बात याद रखो, एक बात मैं पूछूं तो ही कारण कवन बिसारे हूं मोही। भगवान आपसे एक बात पूछता हूं, आपने मुझे क्यों भुला दिया। जब विरह की अग्नि उठती है, व्याकुलता बढ़ती है, तो वो भी एक विचित्र स्थिति होती है। दिन नहीं भूख, रात नहीं निद्रा, रात्रि में नींद नहीं आती, दिन में खाना पीना अच्छा नहीं लगता, किसी आदमी से बोलता है, व्यवहार करता है तो अंदर ही अंदर अप्रियता होती, मैं क्यों समय खराब कर रहा हूं। जैसे किसी आदमी का कोई प्रेमी व्यक्ति मर जाए तो उससे कोई आदमी मिलता है तो उसको अंदर से लगता है कि इनके मिलने से क्या होगा, मेरा मरने वाला तो मर गया, अब इनके मिलने से क्या होगा, ऐसे अंदर ही अंदर पश्चाताप होता रहता है। किसी का बहुत बड़ा घाटा लग गया, उसके सामने यदि बढ़िया से बढ़िया खाद्य पदार्थ रखा है और उसके पास कई अनुकूलताएं भी है, पर उसके दिल में एक टीस रहती है कि मेरे करोड़ों का घाटा लगा हुआ है, वो टीस नहीं मिटती। ऐसे जिसको भगवान की प्रियता जागृत हुई है और फिर वो भगवान के विरह में डूबा रहता है तो उसके हृदय में हरदम एक शूल चुभती रहती है, क्योंकि परमात्मा को छोड़कर कोई दूसरा कोई भी काम करता है उसमें समय लगता है, मन लगता है, वाणी लगती है, शरीर को लगाना पड़ता है, बुद्धि को लगाना पड़ता है, तो वो उसके लिए रोने की जगह है, वो अंदर ही अंदर रोता है, क्या कर रहा हूं। उसके लिए एक प्रकार से पश्चाताप करने की जगह है कि देखो मेरा समय यूं ही जा रहा है, अतः सोच समझ करके हमको चलना चाहिए। बिना विचारे जो करे सो पाछे पछिताए, काम बिगाड़े आपनो जग में होत हसाए, जग में होत हसाए चित्त में चैन न पावे, खान पान सनमान राग रंग मन नहीं भावे, कह गिरधर कबीराय करम गति टरतन टारे, खटखट है जिए माए कियो जो बिना बिचारे। गिरधर कवि कह रहे हैं कि बिना बिचारे कुछ करते हो तो अंदर खटकना पड़ता है, खटकता है। काम बिगाड़े आपनो जग में हो तो हंसाए, अपना तो काम बिगड़ गया, जग में हंसी होती है। जग में हंसी होने का अर्थ क्या हुआ कि देखो ये मनुष्य शरीर में बैठा हुआ प्राणी है, आत्म कल्याण में तो चलता नहीं है, दूसरा ही दूसरा धंधा छेड़ दिया। संसार में हंसी होती है, चित्त में चैन नहीं पड़ती, खूब राग रंग मस्ती का वातावरण भी मिले तो अच्छा नहीं लगता, खूब डांस हो रहा है, नाच हो रहा है और जो है विलासिता के सब साधन है पर अच्छे नहीं लगते हैं। खान पान सम्मान राग रंग ये उसको भीतर से बुरे लगते हैं। रंग कहते हैं परिणाम को। तो गिरधर कविराज कहते हैं कि भाई जो होना है वो होगा ही, कर्म की गति कोई टाल नहीं सकता, किंतु वह चीज खटकती रहती है जो बिना बिचारे आदमी काम करता है। तो भगवान के विषय में जो आदमी भगवान को छोड़ करके एक क्षण भी दूसरे काम में बिताता है तो वह उसके लिए खटकने की बात होनी चाहिए। जैसे अभी बताया कि अविवेकी व्यक्ति को धन का घाटा लगने पर अंदर खटकता है, ऐसे खटकना चाहिए। याद रखो ये मानव जीवन का समय है, बहुत कीमती है, इससे ऊंचा कोई समय नहीं है। फालतू काम में हम लोग बिता रहे हैं, ये कैसे बर्दाश्त हो रहा है? ये समझना चाहिए कि इसी समय को हम फालतू काम में भी लगा रहे हैं और इसी समय को हम भगवान में भी लगा सकते थे, ऊंचे से ऊंचे काम में लगा सकते थे जिसको नीचे से नीचे काम में लगा रहे हैं। कोई भी मन में पाप की वृत्ति पैदा हो तो उसमें कहो कि अरे ये पाप करूंगा तो ये समय तो निकल जाएगा, इस समय में भगवान को ही याद करो ना, तो पाप की वृत्ति भी खत्म हो जाएगी और भगवान में प्रेम हो जाएगा। विशुद्ध प्रेम होता है फिर भगवान के भुलाने पर भी भूली नहीं होती, संसार की विस्मृति होती है, क्योंकि जब वो उसने संसार को एक माया मात्र समझ लिया, बाइस्कोप के माफिक समझ लिया, बाइस्कोप माने सिनेमा, सिनेमा बाइस्कोप के माफिक समझ लिया, फिर उसकी यदि संसार की भूली भी होती है तो यह उसके लिए अच्छी बात है। बाइस्कोप के तमाशे की तरह संसार स्वप्न के समान है, तो एक प्रकार से संसार की ऐसी प्रतीति हो जाती है तो फिर संसार दिखता ही नहीं है। दिखता क्या है? तो भगवान की लीला हो रही है, भगवान की लीला हो रही है। ये अंदर का हमारा भाव ऐसा होता है तब ये बात समझ में आती है कि लीला हो रही है, भगवान ये चरित्र कर रहे हैं। भगवान अनेक रूप का धारण करके आमोद प्रमोद कर रहे हैं, भगवान क्रीड़ा कर रहे हैं। कोई भी प्राणी कुछ भी करता हो तो आहा देखो भगवान क्या रूप में क्या कर रहे हैं, उसके लिए तो भगवान में उत्तरोत्तर प्रेम बढ़ता है। जैसे बाइस्कोप देखने वाला मन में समझता है कि ये बाइस्कोप है, सिनेमा है, झूठा है, फिर भी सिनेमा को देखते हुए वो कभी हंसता है तो कभी रोता है, कभी कहे हाँ ये अच्छा है, ये बुरा है। अरे जब आप इसको बाइस्कोप मान रहे हो, सब झूठा ही है, तो फिर रोते क्यों हो, हंसते क्यों हो, कुछ है ही नहीं, फिर रोते हंसते क्यों हो? तो देख तो रहे हैं ना, देख तो रहे हैं इसको। ऐसे ही बाइस्कोप के अंदर जैसे दृश्य देखते हो और उसमें एक रस बनता है, रोने का रस, हंसने का रस बनता है, ऐसे इस संसार को भगवान की लीला समझते हुए अपने अंदर आनंद का रस बनना चाहिए। फिर देखो आपको कितना जल्दी भगवान में प्रेम दिखता है। सिवाय प्रेमास्पद भगवान और प्रेम करने वाले प्रेमी के अतिरिक्त तीसरा चौथा पांचवा कोई है ही नहीं, केवल आप दो ही हो। वहां केवल प्रेमास्पद भगवान, प्रेमास्पद माने प्रेम की जगह, और प्रेम करने वाला प्रेमी। ये प्रेम क्या है? प्रेम भी एक भगवान की क्रीड़ा है। प्रेमी जो है वो समझो कि उनकी लीला में ही हो रहा है, लीला का रूप धारण किए हुए है भगवान। वहां लीला क्या है? भगवान का जो चरित्र है वो लीला है, भक्त का जो चरित्र है वो भगवान के लिए लीला है, भक्त का जो चरित्र है वो भगवान को मुग्ध करता है और भगवान का जो चरित्र है वो भक्त को मुग्ध करता है। एक दूसरे में प्रेम को बढ़ाने वाला है, एक दूसरे में आनंद को बढ़ाने वाला है, एक दूसरे को आह्लादित करने वाला है, आमोद प्रमोद करने वाला है। ऐसा समझो कि यही एक विशुद्ध अद्भुत प्रेम है। यहां लज्जा नहीं है एक दूसरे की, न तो भक्त लज्जा करता है न भगवान लज्जा करते हैं। कोई लज्जा संकोच कुछ नहीं है। भगवान के लिए तो भक्त प्रेमास्पद है और भक्त के लिए भगवान प्रेमास्पद है। वहां कोई बड़ा छोटा नहीं है, एकता है। वह स्थिति सब भावों में उठी हुई है, सबसे ऊंची है। वहां वात्सल्य भाव भी नहीं है जैसा पिता पुत्र का, माँ बेटे का वात्सल्य भाव, वो भी नहीं। वहां सख्य भाव भी नहीं कि वो उससे प्रेम करे वो उससे प्रेम करे, बराबरी का भाव ये भी नहीं। वहां मित्रता भी नहीं, वहां कांता भाव भी नहीं कि कोई भक्त अपने को भगवान की पत्नी मानकर चलता हो, इसकी भी साधना है, वो भी नहीं, कुछ नहीं। स्वामी सेवक भाव भी नहीं, दास भाव भी नहीं, वहां शांत भाव भी नहीं। अद्वैत ब्रह्म की प्राप्ति में जो शांत भाव होता है वो भी वहां नहीं है, क्योंकि अद्वैत ब्रह्म की जो प्राप्ति है वो इस प्रेम के मार्ग से कुछ अलग है। यह द्वैत होते हुए भी अद्वैत है और वह अद्वैत होते हुए भी अद्वैत ही है। ये दो होते हुए भी एक है और एक होते हुए भी एक है। यहां प्रेम की प्रधानता है, वहां ज्ञान की प्रधानता है। अद्वैत में ज्ञान की प्रधानता है, ज्ञान परमात्मा का स्वरूप है। इधर भक्ति में प्रेम परमात्मा का स्वरूप, बहुत बढ़िया बात। लज्जा तो बहुत नीचे की बात हो गई, वहां लज्जा संकोच कुछ नहीं है। स्वामी सेवक भाव भी वहां इसलिए नहीं है कि कौन आदर करे कौन आदर लेवे, वहां गुण गुणी भाव भी नहीं है। हाँ, तो एक भगवत भाव है। इस बात को यदि समझना हो तो एक उदाहरण से समझ सकते हैं कि जैसे गहरी नींद आती हो, उस गहरी नींद में बाप अपने आप को और अपने पुत्र को भूलता है, स्त्री अपने को और अपने पति को भूलती है, पति अपने को और अपनी पत्नी को भूलता है, जितने संबंध हैं परिवार के, वस्तु के साथ, व्यक्ति के साथ, गहरी नींद में सब उसमें डूब जाते हैं। इसी प्रकार से परम ज्ञान में और परम प्रेम में ये लाज संकोच स्वामी सेवक भाव, ये जितने भाव हैं सब भाव डूब जाते हैं। इन सब भावों को लांग करके ही ये प्रेम भाव होता है। या यूं कहो कि ये प्रेम का फल है, या यूं कहो कि ये प्रेम का स्वरूप है। जो शब्द आपकी समझ में आए उसका प्रयोग करो, उसकी बात नहीं है। परंतु ये बात शब्द की तरह नहीं हुआ, यहां तो तूष्णीम भाव है। तूष्णीम माने चुप हो जाए, वाणी भी चुप हो जाए, बुद्धि भी चुप हो जाए। हम तो कहते हैं कि ऐसी स्थिति में भगवान की स्तुति प्रार्थना भी नहीं हो, किसकी स्तुति करे, कौन करे, क्या प्रार्थना करे, किसकी प्रार्थना करे, किस चीज के लिए करे, कुछ नहीं है। प्रार्थना का जो साधन है ये पहले का है, स्तुति का जो साधन है वो प्रार्थना से तो ऊंचा है, लेकिन एकदम उसमें चुप होने से ऊंचा तो कोई है ही नहीं। यह जो माधुरी भाव, सख्य भाव, दास भाव, वात्सल्य भाव, शांत भाव, इन सब भावों से अतीत अवस्था है। तीनों गुणों से अतीत, पांचों भावों से अतीत, तीनों अवस्थाओं से अतीत, केवल विशुद्ध प्रेम, विशुद्ध प्रेम का स्वरूप कहो या विशुद्ध प्रेम का फल कहो, परमात्मा की प्राप्ति कहो, परम शांति की प्राप्ति कहो, परम धाम की प्राप्ति कहो, परम आनंद की प्राप्ति कहो, परम प्रेम की प्राप्ति कहो, जैसा आप कहो, सुनो, समझो, वैसा करो। सारी बात तो इसी बात में है कि अपने अंदर भगवान के प्रति विशुद्ध प्रेम पैदा होना चाहिए। तो ऐसा लेख सेठ जी का बहुत कम मिलता है, बहुत बढ़िया लेख है। चुप हो जाए, समझदारी हो तो ये चीज काम आए अपने।